Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dharmanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad ki pancham adhyay ka 11 श्लोक चल रहा है। पहले उच्चारण, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहैर ग्रासांब वृष्ट्या चात्म विवृद्धि जन्मा कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसं प्रपद्यते संकल्पं स्पर्शं दृष्टिमोहै ग्राशाम्बु दृष्ट्वा चात्मविवृद्धि जन्म कर्मानुगान्यानुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाण्यभिसं प्रपद्यते श्लोकार्थ हो गया है। आगे चलते भाष्य, चलो थोड़ा देख ले। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहि, संकल्प संकल्पनला सम्यक्त्व की कल्पना, आंख से रूप का दर्शन हो रहा तो आंख तो रूप का ग्राहक है। आंख रूपी यंत्र से हम लोग रूप को देखते हैं बड़े मजे से। आंख पर गांधारी की तरह पट्टी बांध कर देख लो कैसा लगता, आंख की महिमा समझ में आ जाएगी, देख नहीं पाएंगे। तो आंख का काम रूप को देखना, प्रकाशन करना। यहां तक ठीक है कि भाई ये गद्दा है कि अच्छा है, उसके अनुसार चलना। परंतु ये जो मन है उसमें मोहर लगाता है, अच्छी चीज है, बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, तो सम्यक्त्व की कल्पना कर लिया। ऐसे ही आपका श्रोत्रेंद्रिय है कान, कान से सब सुनना अच्छी बात है, उसमें सम्यक्त्व की कल्पना, बहुत मीठी तोतली अच्छी शब्द है, वही से शुरू हो गया। ये मोह का बीज है, मोह का। ऐसी त्वचा से स्पर्श ठीक, परंतु स्पर्श में सम्यक्त की भावना। अब सम्यक्त की कल्पना कर लिया, वहीं से फिर स्पर्शन दृष्टि मोह शुरू। अमोह सकल व्याधिन कर मूला, ताई उपजही विविध सूला। ये मोह सबका जड़ है। ग्रासाम वृष्टिया दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार से अन्न जल के वृष्टिया मतलब कि वर्षा से प्रचुर मात्रा के सेवन से शरीर की वृद्धि होती है, ऐसे ही इन कर्मों के अनुगामी जीवात्मा अनेक योनियों में अनेक रूपाणी शरीरों को ग्रहण करता रहता है। भाष्य, संकल्पन इति प्रथमं संकल्पनम ततस्पर्शनम त्वगिंद्रिय व्यापारः। पहले संकल्प होता है, बाद में स्पर्शन होता है। वैसे देखा जाए तो केवल दो ही इंद्रियां हैं, दो नहीं, दो हम लोग मानते हैं ना, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पर दो में सबका समावेश हो जाता है, एक मन इंद्रिय, दूसरा त्वग इंद्रिया। जो दसों इंद्रियां हैं त्वग के अंदर ही है, आंख भी है त्वग के अंदर ही भी, नाक भी, कान भी, जीभ भी, है ना, मल पायु पस्त हस्त पाद इतने भी है, मतलब वाक पाणी पाद पायु पस्त कर्मेंद्रिया और आंख नाक कान रसनेन्द्रिय, ये जो ज्ञानेन्द्रिय दसों की दसों त्वग इंद्रिय के अंतर्गत है। तो कुछ दार्शनिक दो ही इंद्रिय मानते हैं, त्वग इंद्रिय और मन। मन अंतःकरण है, आंतर प्रत्यक्ष का साधन, और बाह्य प्रत्यक्ष के लिए त्वग इंद्रिय है। त्वग इंद्रिय में दसों का अंतर्भाव हो जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं है, है? हाँ, त्वक त्वक मतलब ये चमड़ा स्क्रीन, इसमें तो दो इंद्रिय से काम चल जाता, और मन में तो सब आ जाएंगे। तो दो इंद्रिय को लेकर यहां घटाए तो बढ़िया घटता है। पहले संकल्पन हुआ, सम्यक्त्व की कल्पना हुई, कल्पना होने से स्पर्शन जो शब्द लिखा ना, स्पर्शन मतलब कि दस इंद्रियों को ले लेना, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन बोल दी स्पर्श इंद्रिय को, दस इंद्रिय। अब इसके बाद में दृष्टि होता है, विचार, विचार करते कि अपनी क्या क्षमता है, इस चीज को प्राप्त कर सकते कि नहीं, तब जाकर मोह, वही पर मोह, प्राप्त कर सकते तो मोह हो गई प्रवृत्ति, और नहीं प्राप्त कर सकते तो लोभ होगा, फिर क्रोध होगा, फिर ईर्ष्या होगी। तो स्पर्शन का जो दार्शनिकों के मत से दो इंद्रिय है ना, उसमें अच्छा घट जाता, स्पर्श इंद्रिय के अंदर दस इंद्रियां और एक मन। फिर इसके बाद में जैसे अन्न जल की प्रचुर मात्रा से सेवन करने से शरीर बढ़ता है, वैसे ही ये जो मतलब की जीवात्मा है, इन विषयों के सेवन से कर्मों का अनुगमन करता, कर्म क्रिया, इन क्रिया कर्मों का अनुगमन करने से अनेक योनियों में चक्कर काटता रहता है। भाष्य, प्रथम संकल्पनम, संकल्प होता है, तदा स्पर्शनम, त्वगिंद्रिय व्यापार, त्वगिंद्रिय का व्यापार होता है, ततो दृष्टि विधानम। अब त्वगिंद्रिय व्यापार मतलब कि चाहे हाथ से छूना हो, अब हाथ से छूने के लिए त्वगिंद्रिय का व्यापार मतलब हाथ से स्पर्श करना, उसके लिए सबकी जरूरत है। इसलिए जो बड़े दार्शनिकों ने निष्कर्ष निकाला कि दो इंद्रिय से काम चल जाएगा, स्पर्श इंद्रिय और मन से अच्छा घटता है। किसी चीज को छूने के लिए देखना ही पड़ेगा, पैर भी वहां तक पहुंचाएगा ले जाकर आपको, बिना पैर पहुंचाए होगा नहीं, पैर से वहां पहुंचेंगे, आंख से देखेंगे, कान से सुनेंगे, नाक से भी सुनेंगे, कि यहां भी त्वग इंद्रिय ही नाक में है। तो त्वग इंद्रिय का व्यापार होता है। इसके बाद में दृष्टि विधानम मतलब विचार करते हैं, जैसे विचार हुआ, अच्छा विचार किस तरह होता है, तो हमारे अंतःकरण में सात्विक वृत्ति है तब तो बढ़िया विचार होगा, और यदि राजस वृत्ति है तो कई तरह की प्रवृत्तियात्मक विचार होगा, और तामस है तो ईर्ष्या, जलन का, कला का, ये सब विचार होंगे। एक ही चीज है, उस चीज को देखने के बाद पहले संकल्पन किया, संकल्पन के बाद वहां गए स्पर्श किए, इसके बाद दृष्टि मतलब विचार किया, अब विचार करने के बाद जो मोह होता है वह मोह जैसी वृत्ति वैसा होगा। सात्विक वृत्ति है तो सोचेगा कि भाई बड़ा सुंदर अजीबो गरीब फूल है, क्या सुंदर कोमल है, खुशबूदार है, देखने में सुंदर है, इसको अपने ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए, भगवान बड़े खुश होंगे। सात्विक वाला ऐसा सोचेगा, राजसी होगा क्या सोचेगा कि चलो ले चलो अपने उपयोग में लाएंगे, घर में सजाएंगे, करेंगे वो करें, सजावट में ले जाएगा। और तामसी होगा तो कहेगा चलो अपने प्रेमिका को देंगे, बड़ी खुश हो जाएगी। कहूंगा ऐसा दुनिया में कहीं फूल नहीं, एक करोड़ का लाया हूं, लाएगा लाख तो बताएगा करोड़। अब फूल का क्या दोष है, फूल तो वही है, वस्तु का दोष नहीं। परंतु अंतःकरण में जैसी वृत्ति वैसा विचार हुआ, उस विचार से वैसा चित्त में, मतलब सात्विक है तो प्रसन्नता होगा, राजस है तो प्रवृत्ति बेचैनी, तामस है तो दूसरे की खुशामदी या ईर्षा ज्वलसी होगी। तो वस्तु में दोष नहीं, दोष हमारे अंतःकरण में, उसके अनुसार क्रिया होती है। ये कहीं चीज है, जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा सुख दुख मोह होता है, सुख दुख और मोह तीनों होता है। ये कई बार वाचस्पति मिश्र ने इस बात को उद्धरण दिया है कि मानो एक स्त्री पिंड है, बीमार हो गई, उसका भाई स्कूटर पर बैठाकर अस्पताल ले जा रहा, जंगल का रास्ता है स्त्री पिंड, भाई ले जा रहा, उसकी बहन है, पर रास्ते में जितने दृष्टि होंगी भावना उतना फल होगा। अब रास्ते में यदि मान लो उसकी सौत देखी, सौत का गांव पड़ता, उसके आगे हॉस्पिटल, तो क्या सोचेगी, भगवान करे बस वही वहां से वापस ना आए। ऐसा लोग बोलते हैं, सोचने की तो बात अलग है, लोग बोलते हैं वापस ना आए वहीं से, क्योंकि उसको ईर्षा है ना, सोचेगी अच्छा हो जाएगा। और यदि कोई कामुक पुरुष है तो मोह होगा, और यदि रास्ते में सिंह है तो उसको भोजन दिखाई पड़ेगा। स्त्री पिंड में भोजन सिंह को दिखाई दे रहा, योगी है तो उसके लिए हाड़ मास शाम का पुतला है, और भक्त है तो क्या देखेगा, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। तो वास्तव में स्त्री पिंड में दोष नहीं, जिसकी जैसी भावना वैसा, बच्चे के लिए मां स्वरूप है, आह्लादकता मिलेगा। तो स्त्री किसी को दुखी कर रही, किसी को सुखी, किसी को मुग्ध, तो वह नहीं कर रही अपनी भावना, वह तो एक वस्तु पिंड है, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा फल हो रहा। वैसे यहां बोल रहे कि पहले संकल्पन, इसलिए आपको संकल्पन में ही रोकना है। इसलिए रुद्राष्टाध्यायी में अभिषेक के पूर्व आप बार बार कहते हैं ना, 10 बार, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, बार बार, यह जो मेरा मन है शिवमल मंगलमय कल्याणकारी अच्छा संकल्प करने वाला हो, ततो मोह, फिर मोह होता है, तई संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहि, शुभा शुभानि कर्माणि स्पद्यन्ते। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह इनके द्वारा शुभा शुभ कर्मों का संपादन होता है, ततः कर्मानुगानि कर्मानुसारेणि स्त्री पुंसक लक्षणानि अनुक्रमेण परिपाकापेक्षया देही मर्त्यः स्थानेषु देवत्रियं मनुष्यादिषु अभी संप्रपद्यते। सबसे पहले संकल्प, सम्यक् की भावना, इसके बाद स्पर्श की इच्छा, इसके बाद विचार हुआ, विचार के बाद में मोह, अमोह के बाद भी प्रवृत्ति निवृत्ति शुरू हो गई। तो शुभा शुभानि कर्माणि शुभ अशुभ कर्मों का संपादन करता, तथा कर्मानुगानि कर्मानुसारणि, इसके बाद कर्मानुसार जैसा कर्म किया। अब ये कहीं कर्म है यज्ञ, अब जो यज्ञ है उस यज्ञ कर्म कई तरह के होते, अभी चार यज्ञ भी है और स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला भी यज्ञ है, काम यज्ञ भी है, नैमित्तिक यज्ञ भी है। यदि शत्रु को विनाश की भावना है तो अभिचार याग करेगा, वही अग्नि है, वही सामग्री है, सब कुछ वही, परंतु वह शत्रु विनाश के लिए अभिचार याग करेगा। तब इस अशुभ यज्ञ करने के कारण से शत्रु नाश तो हो जाएगा, परंतु उसे जो पाप लगेगा वह भी, पर पाप को नहीं देखता, शुभ कर्म में पवित्र हो जाता। और सात्विक चित्त है तो शुद्ध यज्ञ करेगा, निष्काम यज्ञ करेगा, भगवत प्रीत्यर्थ करेगा। तो मनुष्य संकल्पनादि से शुभाशुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है। स्त्री पुम नपुंसक लक्षण अनुक्रमेण, मतलब की परिपाकापेक्षा, अनुक्रमेण का अर्थ है अपने कर्मों की परिपक्वावस्था। धान खेत में लगाने के बाद चार महीने के बाद उसका पाक होता है, परिपाक होता है, तब किसान काटता है। ऐसे जो आप आज कर्म कर रहे आज फल नहीं मिलेगा, जो आज आप भोजन कर रहे तो आज ही डायबिटीज नहीं हो जाएगी, डॉक्टर साहब को पता है, चार से दस बारह वर्ष तक उसका असर रहता है। जो भोजन करते हैं ना वो आयुर्वेद में 12 वर्ष माना है, 12 वर्ष के बाद खलास। तो जो आप आज खूब मीठा खा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दो चार महीने में डायबिटीज जाएगी, वो धीरे धीरे रक्त में, नस में, धातु में, सब जगह जब प्रवेश करेगा फिर परिपाक होने के बाद तब परिणाम आएगा। ऐसे ही आज जो आप सुबह शुभ कर्म कर रहे वह उसका नियम है, त्रिभीर दिने त्रिभीर पक्षय त्रिभीर मासय त्रिभीर वर्षय अत्युत्कटम पुण्यम पापम फलति। बहुत उत्कृष्ट कोई पुण्य है, उत्कृष्ट मतलब एक पांव पर खड़ा हो गए खाना पीना छोड़कर, ये उत्कृष्ट हो गया। जैसे भी हो हमें भगवान को पाना तो तीन दिन में फल मिल जाएगा, इससे थोड़ा कम है तो तीन पक्ष में, तीन पक्ष मतलब 45 दिन, और थोड़ा कम है तो उसको तीन महीने में कहा, इसके बाद में तीन वर्ष में उत्कट पाप पुण्य का फल देता है। तो कर्मानुसार मनुष्य योनियों को प्राप्त करता है सुबह सुबह, परिपाक मतलब कि परिपक्व अवस्था होने पर, देही मतलब मर्त्य स्थानेशु का अर्थ योनिषु, देव त्रियंग मनुष्यादिशु अ प्रपद्यते प्राप्त करता है। हम लोगों का बड़ा भारी पुण्य है कि कम से कम ऐसे सुंदर मनुष्य, मनुष्य में भी मोक्षा की भावना और महापुरुषों की संगति। तत् दृष्टांत महा, अब एक दृष्टांत दे रहे हैं कि किस प्रकार से कर्मों के परिपाक से देव त्रियंग मनुष्यादि योनि को प्राप्त करता है, उसको बता रहे दृष्टांत से। ग्रासां बुनो हो अन्न पानयो अनियतयो वृष्टि आसेचनम निदानम आत्मना सहिदस वृद्धि जायते तथा यथा तद्वत इत्यर्थ। ग्रासांबो, ग्रास मतलब जो मुख में डालते उसका नाम ग्रास है, है? क्या अन्न, अन्न ही तो डालेंगे और अन्न, अन्न मतलब कुछ भी हो सबका अन्न अलग अलग है। तो जो मुखार बिंद में जो ग्रास डालते हैं, अंबु मतलब जल, अन्न पानयो अनियतयो, लिख दिया इसके बोलने में दिक्कत नहीं, आप लोगों को साफ लिख दिया है। अन्न पानयो अनियतयो मतलब नियत नहीं है, किसी का पेट चार ग्रास में भरता, किसी का आठ में, आठ में तो मुश्किल है, चार में तो हो जाएगा बीमार का। अष्टो ग्रासा मुनिर भक्षा षोडशारण्यवासिनो, द्वात्रिंशति गृहस्थानाम यथेष्टम ब्रह्मचारिणाम, सबके लिए विधान कर दिया है। कोई मुनि है ना, मननशील, योग करता हो, ध्यान समाधि, खाली आठ ग्रास, और ग्रास बहुत बड़ा नहीं, वो तिरुपति बालाजी की तरह इतना बड़ा वो नहीं, लड्डू कुक्कुटान, जो अंडा होता है कुक्कुट मल्ल की मुर्गे का जो अंडा है उतने परिमाण का होना चाहिए ग्रास, इतना आठ ग्रास खाना है मुनि को, और जो वानप्रस्थी है उनको 16 ग्रास, और आप लोगों के लिए बहुत छूट दे दिया 32 ग्रास, 32 में तो काम हो जाएगा, द्वात्रिंशति 32 ग्रास खा सकते, इससे अधिक नहीं। और ब्रह्मचारियों के लिए जितना भी खाओ, क्योंकि बहुत उसको सेवा करना है, शुश्रूषा करना है, उम्र भी छोटी है, बात ये भी है, जब श्रावणी तेज है उसके लिए छूट है, मतलब 25 वर्ष वालों के लिए कोई मना, जितना खाओ जब खाओ छूट है, सब हजम ही हो जाता है ना, तो 32 तक तो आप हजम कर सकते, पर 32 भी आजकल भारी हो जाता है, 32 तो बहुत हो गया ना, कितना इतना हो गया। चलो, तो कह रहे हैं कि ये जो अनियत है सुनिश्चित नहीं है, जिसका जैसा ग्रास, कोई नियत नहीं कि पाव भर, एक किलो, डेढ़ किलो है, नहीं नहीं ये दिन भर के लिए विधान किया, ऐसा तो अच्छा आपने नियम बना दिया कि जो है 32-32 बार चार बार खा लेंगे तो बहुत हो गया, अच्छा तर्क किया आपने, ये 24 घंटा के लिए विधान है, ये तो मुनि भी होशियार है, सुबह 8 ग्रास, दोपहर 8 ग्रास, शाम को 8 ग्रास, तो बहुत हो गया, 24 घंटा में खाना है 32 ग्रास, ये नियम है, नहीं तो 3 बार में तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अनियत है सुनिश्चित नहीं है, इससे क्या होता है, आत्मना कार्त्या शरीरस्य, शरीर की वृद्धि होती है, बढ़ता है, ऐसे ही आप जैसा कर्मानुष्ठान करते तद अनुसार शरीरों की प्राप्ति होती है। अब और भी देख ले आगे, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्विणोति क्रिया गुणै आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव रूपाणि देहि स्वगुणैर्विणोति क्रिया गुणैरात्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरोपि दृष्टः।